और साहिल यहूदा यहोशपत के 18वें बरस से अखियत का बेटा यहूराम सामरिया में इसराइल पर सल्तनत करने लगा और उसने 12 साल सल्तनत की और उसने खुदावन के आगे बलि की, पर अपने बाप और अपनी माँ की तरह नहीं, क्योंकि उसने बल के उस स्तून को जो उसके बाप ने बनाया था दूर कर दिया। तो भी वो नबात के बेटे यूरबाम के गुनाहों से, जिनसे उसने इसराइल से गुनाह कराया था, लिपटा रहा और उनसे किनारा कशी ना की। और मोआब का बादशाह मिसा बहुत भेड़ बकरियां रखता था और इसराइल के बादशाह को 100,000 बर्रों और 100,000 मेंढों की ऊन देता था। लेकिन जब अखियब मर गया तो साहिब मोआब इसराइल के बादशाह से बागी हो गया। उस वक्त यहूराम बादशाह ने सामरिया से निकलकर सारे इसराइल की मौजूदात ली और उसने जाकर शाहे यहूदा यहोशपत से पुछवा भेजा कि शाहे मोआब मुझसे बागी हो गया है, सो क्या तू मोआब से लड़ने के लिए मेरे साथ चलेगा? उसने जवाब दिया कि मैं चलूंगा, क्योंकि जैसा मैं हूँ वैसा ही तू है, और जैसे मेरे लोग वैसे ही तेरे लोग, और जैसे मेरे घोड़े वैसे ही तेरे घोड़े हैं। तब उसने पूछा कि हम किस राह से जाएं? उसने जवाब दिया, दस्ते अदूम की राह से। सिनाचे चाहे इसराइल और चाहे यहूदा और चाहे अदूम निकले और उन्होंने 7 दिन की मंत्र का चक्कर काटा और उनके लश्कर और सिपाहियों के लिए जो पीछे पीछे आते थे कहीं पानी ना था। और चाहे इसराइल ने कहा, अफसोस कि खुदावन ने इन 3 बादशाहों को इकट्ठा किया है ताकि उनको साहे मोआब के हवाला कर दे। लेकिन यहोशपत ने कहा, क्या खुदावन के नबियों में से कोई यहाँ नहीं है ताकि उसके वसीला से हम खुदावन की मर्जी दरियाफ्त करें? और साहे इसराइल के कादमों में से एक ने जवाब दिया कि अलीसा बिन साफत यहाँ है, जो एलिया के हाथ पर पानी डालता था। यहोशपत ने कहा, खुदावन का कलाम उसके साथ है। सो साहे इसराइल और यहोशपत और साहे अदोम उसके पास गए। तब अलीसा ने साहे इसराइल से कहा, मुझको तुझसे क्या काम? तू अपने बाप के नबियों और अपनी माँ के नबियों के पास जा। पर साहे इसराइल ने उससे कहा, नहीं नहीं, क्योंकि खुदावन ने इन 3 बादशाहों को इकट्ठा किया है ताकि उनको मोआब के हवाला कर दे। अलीसा ने कहा, रब्बुल अफवाज की हयात की कसम जिसके आगे मैं खड़ा हूँ, अगर मुझे शाहे यहूदा यहोशपत की हजूरी का पास ना होता तो मैं तेरी तरफ नजर भी ना करता और ना किसे देखता। लेकिन खैर, किसी बजाने वाले को मेरे पास लाओ। और ऐसा हुआ कि जब उस बजाने वाले ने बजाया तो खुदावन का हाथ उस पर ठहरा। बस उसने कहा, खुदावन यूं फरमाता है कि इस वादी में खंदक ही खंदक खोद डालो, क्योंकि खुदावन यूं फरमाता है कि तुम ना हवा आती देखोगे और ना मी देखोगे, तो भी ये वादी पानी से भर जाएगी और तुम भी पियोगे और तुम्हारी मौसी और तुम्हारे सिपाही भी, और ये खुदावन के लिए एक हल्की सी बात है। वो मुआबियों को भी तुम्हारे हाथ में कर देगा और तुम हर फसीलदार शहर और उम्दा शहर मार लोगे और हर अच्छे दरख्त को काट लोगे और पानी के सब जख्मों को भर दोगे और हर अच्छे खेत को पत्थरों से खराब कर दोगे। तो सुबह को कुर्बानी चढ़ाने के वक्त ऐसा हुआ कि अदूम की राह से पानी बहता आया और वो मुल्क पानी से भर गया। जब सब मुआबनों ने ये सुना कि बादशाहों ने उनसे लड़ने को चढ़ाई की है, तो वो सब जो हथियार बांधने के काबिल थे और ज्यादा उम्र के भी इकट्ठे होकर सरहद पर खड़े हो गए। और वो सुबह सवेरे उठे और सूरज पानी पर चमक रहा था और मुआबनों को وہ پانی جو ان کے مقابل تھا خون کی مانند سرخ دکھائی دیا. سو وہ کہنے لگے یہ تو خون ہے. وہ بادشاہ یقیناً ہلاک ہو گئے ہیں اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو مار دیا ہے. سو اب اے مواب لوٹ کو چل. اور جب وہ اسرائیل کی لشکر گاہ میں آئے تو اسرائیلیوں نے اٹھ کر موابیوں کو ایسا مارا کہ وہ ان کے آگے سے بھاگے, پر وہ آگے بڑھ کر موابیوں کو مارتے مارتے ان کے ملک میں گھس گئے اور انہوں نے شہروں کو مسمار کیا اور زمین کے ہر اچھے کتا پر سبوں نے ایک ایک پتھر ڈال کر اسے بھر دیا اور انہوں نے پانی کے سب چشمے بند کر دیے اور سب اچھے درخت کاٹ ڈالے. فقط کیس حراست ہی کے پتھروں کو باقی چھوڑا, پر گوپیاں چلانے والوں نے اس کو بھی گا گھیرا اور اسے مارا. جب شاہ مواب نے دیکھا کہ جنگ اس کے لیے نہایت سخت ہو گئی تو اس نے 700 شمشیر زن مرد اپنے ساتھ لیے تاکہ سب چیر کر شاہ ادوم تک جا پڑے, پر وہ ایسا نہ کر سکے. تب اس نے اپنے پہلوٹے بیٹے کو لیا جو اس کی جگہ بادشاہ ہوتا اور اسے دیوار پر سوختی قربانی کے طور پر گزرانا. یوں اسرائیل پر قہر شدید ہوا تو وہ اس کے پاس سے ہٹ گئے اور اپنے ملک کو لوٹ آئے.